ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशहं पयव्रतम् अर्चयेत् अरविन्दाक्षं भक्तया परमयान्विता। फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम् अर्चये अरविन्दाक्षं भक्तया परमयान्विता। फाल्गुनस्य, फाल्गुन मास फेब्रवरी मार्च को, अमले शुक्ल पक्ष में, पक्षे पक्ष में, द्वादशहम 12 दिनों तक, जिसका अंत द्वादशी के दिन होता है, पय व्रतम केवल दूध ग्रहण करने का व्रत, और चाहिए तो पूजा करें, अरविंदक्षम कमल नयन भगवान की, भक्तया भक्ति के साथ, परमया शुद्ध अन्वित से युक्त। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। फाल्गुन मास फेब्रवरी मार्च के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पीकर आश्रित रहकर व्रत, दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजा करने का अर्थ है अर्चना मार्ग का अनुसरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मनुष्य को भगवान विष्णु या कृष्ण के अर्चा विग्रह की स्थापना करके, उन्हें वस्त्राभूषित करके, फूलों की माला से अलंकृत करके पूजन करना चाहिए और फल फूल तथा घी शक्कर और अन्न से तैयार किया भोजन अर्पित करना चाहिए। उसे घंटी बजाते हुए आरती करनी चाहिए और अगुर आदि जलाना चाहिए। यह भगवान की पूजा अर्चना कहलाती है। यहाँ पर संस्तुति की गई है केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए, यह पयोव्रत कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग सामान्यतया एकादशी को अन्न नहीं खाते और भक्ति करते हैं, उसी तरह यह संस्तुति की जाती है कि द्वादशी के दिन केवल दूध ग्रहण किया जाए, पयोव्रत तथा भगवान की अर्चन भक्ति, शुद्ध भक्ति हृदय भक्तया से ही की जानी चाहिए। भक्ति के बिना भगवान की पूजा नहीं की जा सकती है। भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है और भगवान से सीधे जुड़ना चाहता है तो यह जाने कि वे क्या खाते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं और भक्ति योग ग्रहण करें। जैसा कि यहाँ पर संस्तुति भी की गई है, भक्त्या परमयान्वितः, मनुष्य को शुद्ध भक्ति से परिपूरित होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निरमायसेतेऽदमु सुपुरुषं भुक्ते गुणांषोडशषोडशात्मकम् सोलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी। अस्वादय शुभकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अब तक ते सुन चुके हैं कि माता अदिति किस प्रकार से दुखी थी और अपने पति से उपाय पूछ रही थी जिससे कि उसका दुख दूर हो सके। कश्यप मुनि आश्चर्य प्रकट करते हुए अब वह उपाय बता रहे हैं जिस उपाय से उनका दुख दूर हो सके। समस्त दुखों को दूर करने वाला संसार में यदि कोई व्यक्ति है तो वे हैं भगवान। भगवान और भगवान की भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें सब प्रकार के दुखों से छुटकारा दिला सकती है। भक्ति का कोई भी अंग जैसे श्रवण, ये श्रवण की जो क्रिया है यह हमें दुखों से छुटकारा दिला सकती है। यदि हम भगवान के शुद्ध भक्त से के मुख से कथा सुने तो निस्संदेह दुख दूर होगा। जैसा कि भगवान कपिल देव कहते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जो उष्णादाद अपवर्ग वर्तमनी। तज्जो उष्णादाद, उष्ण मतलब ताप। इस संसार में हम लोग दैहिक दैविक और भौतिक ताप से जल रहे हैं। उसको तज्जो, उसको जड़ से कबार करके फेंक देता है यह श्रवण की पद्धति, भक्ति की पद्धति। तो सब प्रकार से हमें एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, जैसे भी हो सके हमें भगवान में अपना मन लगाना चाहिए जिससे कि हमारा दुख दूर हो सके। तो यहां पर कश्यप मुनि अदिति के दुख को दूर करने के लिए साधन बताए हैं। और वह जो साधन है वह है, उसका नाम है पयोव्रत। आज जो हम लोग श्लोक पढ़े, इस श्लोक में इससे पहले उन्होंने कहा कि जब मुझे पुत्र की इच्छा हुई तो मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी ने हमें इस व्रत को करने का आदेश दिया था या बतलाया था, नियम बताया था। तो पुनः वही बात कि जब भी कोई कामना हो किसी प्रकार का, अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जेत पुरुष परम, चाहे कोई कामना हो चाहे कामना न हो, कोई भी चीज हो, तो हमें परम पुरुष का भजन करना चाहिए। उसी बात को यहां पर कश्यप जी बता रहे हैं, इस व्रत के विषय में दो बात कह रहे हैं। एक तो दूध पी करके रहना चाहिए और दूसरा बात कि भगवान का भजन करना चाहिए। ये मात्र दूध पी करके रहने से व्रत नहीं हो जाएगा। पयो व्रत केवल दूध पीकर कोई रह जाए वो व्रत नहीं हुआ। आजकल इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं और लोग उनका पूजा करते हैं, फलाहारी बाबा, केवल फल खाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, भजन नहीं करेंगे, बस केवल फल खाते हैं, बस लोग पूजा करते हैं, फलाहारी बाबा हैं। लेकिन कश्यप मुनि जानते थे कैसे पाखंडी होंगे, इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दो काम करना है। एक तो है कि पयोव्रत को धारण करना है यानी दूध पीकर रहना है, और दूसरा भक्तया परमयान्वितः भक्ति पूर्वक यह करना है यानी भजन करते हुए करना है। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब होता है संकल्प। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम संकल्प यदि कहते हैं तो उसे व्रत कहा जाता है। अनेक प्रकार का व्रत होता है, जैसे एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, वैसे यह पयो व्रत है। कुछ लोग धन कमाने का भी व्रत करते हैं, तो संकल्प करते हैं धन कमाना है। तो जब संकल्प कुछ होता है तो लक्ष्य होना चाहिए उस वस्तु की प्राप्ति, और सब चीज साइड में रह जाए। हो सकता है कि ये वस्तुएं जरूरी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट कर सकती है। तो व्रत में खाना पीना सोना इत्यादि इंपॉर्टेंट है लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है, हम एसेंशियल नहीं, उसके बिना भी रह सकते हैं। तो व्रत में हम लोग नहीं खाते हैं या बहुत कम खाते हैं और भजन ज्यादा करते हैं। ये नहीं कि कल एकादशी व्रत है तो व्रत करना है तो हम लोग पूरा मेनू बनाते हैं 56 भोग बनाने का, क्या क्या एकादशी का बना सकते हैं, कुटू के आटा का, उसके बाद फल का कितने प्रकार का केक बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो ये व्रत नहीं हुआ, ये व्रत नहीं हुआ। उसमें तो खाना प्रधान रहा, संकल्प जो है वो भजन का होना चाहिए लेकिन खाना प्रधान रहा तो व्रत नहीं हुआ। और दूसरा कि कुछ लोग व्रत करते हैं और बेचारे पड़े रहते हैं, पूछो क्या हुआ भाई, क्या हो गया, अरे आप नहीं जानते आज मैं निर्जल एकादशी कर रहा हूं। क्या फायदा वैसा निर्जल एकादशी करने, जब माला ही नहीं जप हो रहा है, पेट पर ध्यान लगा हुआ है, तो बल्कि कुछ खा पी करके भजन करो। मेन चीज है भजन करना, व्रत मेन चीज है भजन करना, संकल्प। तो यहां पर कश्यप मुनि जानते थे कि अदिति भूखा नहीं रह सकती है, तो कुछ खाना पीना इसको देना चाहिए, तो भगवान का भजन नहीं कर पाएगी, तो कहते हैं दूध पीकर भजन करो। अब कब शुरू करना चाहिए वो बात बताते हैं। कहते हैं फागुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी पर्यंत या 12 दिन तक का व्रत होता है। तो मैं संक्षिप्त में इसको बताने का प्रयास करूंगा। हिजोल ने श्राद्धा गोविंद महाराज इसका बड़ा अच्छा तरह से वर्णन करते हैं एक श्लोक को लेकर के, लेकिन मैं उतना समर्थ नहीं हूँ। एक श्लोक लेकर जाऊँगा तो लगता है कि 1 महीना लग जाएगा और 1 दिन में नहीं होगा। तो मैं संक्षिप्त में आप लोगों को इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब जो व्यक्ति ये पयोव्रत करना चाहता है, हालांकि हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है, हम लोगों के लिए एक ही व्रत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन जो सही में करना चाहता है वो कर भी सकता है, और यह व्रत जो है ये सिद्ध व्रत है, इसका परिणाम जरूर प्राप्त होगा आज भी। तो प्रथम दिन यदि हो सके तो सुअर के पैर से खोदा हुआ यदि मिट्टी मिले तो उससे अपने शरीर में उसको लेप कर करके और प्रवाहमान जल में यानी नदी में स्नान करें, जिस जो जल जो प्रवाहमान हो, सावर के नीचे नहीं, नदी में है, सावर भी प्रवाहमान है, ऊपर से गिरता है पानी, लेकिन यहां पर नदी में गया, नदी में स्नान करना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक दिन मंत्र बताया गया है, द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि सतयुग का यह मंत्र था, जैसे कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, वैसे सतयुग का यह द्वादश अक्षर मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस मंत्र का और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उन मंत्रों का जप करना चाहिए और प्रत्येक दिन 3 बार स्नान करें और भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और भगवान का पूजा करें। और जब दूसरा दिन आता है व्रत आज किए और दूसरे दिन भगवान का पूजा करने के बाद में 2 ब्राह्मणों को कम से कम खिलाएं और उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके विदा करें। एक महात्मा कहते हैं कि लोग दक्षिणा का नाम सुन करके लोग नाक टेढ़ा कर देते हैं, लेकिन वो दक्षिणा का अर्थ नहीं समझते हैं। दक्षिणा किसे कहते हैं? दो होता है, एक दान और एक दक्षिणा, और आजकल ये दोनों का स्थान ले लिया है चैरिटी। आज लोग दान दक्षिणा को समझते हैं चैरिटी, चैरिटी ही दान दक्षिणा है, लेकिन दान दक्षिणा चैरिटी से बिल्कुल अलग है। दान जो है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, अन्य किसी कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो दान लेने का भागी है, कोई दान पचा ही नहीं सकता है, दान केवल विष्णु के लिए। विभिन्न प्रकार का दान होता है, अन्नदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान। कन्यादान, कन्यादान हम अपने पुत्री को भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो अर्पण नहीं कर सकते हैं, दान हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम ब्राह्मण के हाथ में देते हैं और ब्राह्मण उसको भगवान को अर्पित करते हैं। तो वैसे ही एक सुयोग्य पति के हाथ में अपने पुत्री को देते हैं ताकि वो भगवान की सेवा में उसे लगा सके, इसीलिए कहते हैं पति परमेश्वर। ये टाइटल मुफ्त में नहीं मिला है, इसका मतलब है, इसका मतलब है पति परमेश्वर का, कि वह व्यक्ति जो उस बालिका को, उस स्त्री को भगवान की सेवा में लगा सके, तब तो वह पति है, तब तो वह परमेश्वर के योग्य है, यानी परमेश्वर का प्रतिनिधि है। तो दान विष्णु को दी जाती है, और दक्षिणा का अर्थ होता है कि जो दान दिए तो उसका परिणाम जो है, उसका जो फल है, जो दान लिया उसको मिल गया। आपको क्या मिला? आपने दे दिया और वो लाकर भगवान को दे दिया, तो आपको क्या मिला? तो दक्षिणा के द्वारा उस दान का जो परिणाम होता है, फल होता है, वह प्राप्त किया जाता है। बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं होता है। उदाहरण है विश्वामित्र मुनि का। देखिए, जब महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में अपने पूरे राज्य को विश्वामित्र मुनि को दान कर दिए, स्वप्न में जगह करके स्वप्न में, और श्योर एनफ सुबह सुबह विश्वामित्र मुनि टपक पड़े। जब वो आ गए तो स्वप्न में दान तो दे चुके थे, लेकिन विश्वामित्र ने कहा ठीक है दान दे दिया है, लेकिन इसका फल तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम्हें दक्षिणा देना पड़ेगा, बिना दक्षिणा के तुम्हें फल नहीं मिल सकता है। इसलिए विश्वामित्र जी को दान दिए थे और दक्षिणा के रूप में अपने पत्नी को अपने को बेच करके, और वे दक्षिणा चुकाए विश्वामित्र मुनि को, सब कुछ दान दे चुके थे। तो दान का फल तब होता है जब दक्षिणा दिया जाता है। एक महात्मा कहते हैं, अपभ्रंश भाषा में हमें बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं दक्षिण दक्षिणा, जैसे यह वस्तु यहां कोई खड़ा है और ये उत्तर है, भगवान उधर है और ये दक्षिण है, और कोई धक्का देता है भगवान की तरफ जाता है तो वह कहलाता है दक्षिणा, है जो दक्षिण से धक्का दिया जाए, दक्षिणा, दक्षिण धक्का दिया जाए, कहाँ जाने के लिए, उत्तर जाने के लिए, यानी भगवान की तरफ जाने के लिए। तो यह दक्षिणा सहयोग करता है भगवान की तरफ जाने में। तो यह है दान और दक्षिणा। लेकिन आजकल लोग चैरिटी को समझते हैं कि यह दान है, चैरिटी दान नहीं है। चैरिटी हम करते हैं अपने आनंद के लिए, हम सेल्फिश हैं, हम देते हैं हमको अच्छा लगता है, जब मन करता है तब देते हैं। लेकिन दान में ऐसा बात नहीं है, चाहे मन करे या न करे वो करणीय कार्य है, मस्ट है। बेटी का विवाह करना है, नहीं कर सकते, आजकल हमारा मन नहीं कर रहा है बेटी शादी करने का, वो करना ही पड़ेगा, बेटा का ना करो चलता है लेकिन बेटी करना ही पड़ेगा, है वो कहलाता है कन्यादान। मैं कहा कि दान और दक्षिणा दो वस्तु है। दान केवल भगवान विष्णु को दी जाती है, कोई भी वस्तु, अन्न धन जो भी, और दक्षिणा जो दी जाती है जो विष्णु के बिहाफ में उसे स्वीकार करता है, तब उस दान का फल मिलता है। आप जिसको दक्षिणा दान दी हो, उदाहरण में दिया हरिश्चंद्र जी का, विश्वामित्र जी का, ठीक है ना, उन्होंने पूरा राज दान दे दिया था विश्वामित्र मुनि को, लेकिन उसका फल उन्हें कैसे मिलेगा, तो विश्वामित्र ने तुम्हें दक्षिणा देना पड़ेगा, और दक्षिणा देने के लिए वे अपने शरीर को बेच दिए, अपने पत्नी को बेच दिए, और बेच करके तब दक्षिणा चुकाए, तब उनको दान का फल मिला था बाद में। और तुम्हें कहता कि आजकल लोग इसको भूल गए हैं और सहयोग और चैरिटी को ही वो दान समझते हैं। हॉस्पिटल खुलवा दिया कहते हैं बहुत बड़ा दान कर दिया, स्कूल बनवा दिया बहुत बड़ा दान कर दिया, ये सब दान है ही नहीं, ये चैरिटी है, हिंदी में सहयोग कहते हैं। भगवान नीडी नहीं है, भगवान को जरूरत नहीं है इन वस्तुओं की, हमारा कल्याण होता है, दान देने से हमारा कल्याण होता है। चैरिटी एक निडी व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन दान केवल भगवान को दी जा सकती है, दान देने में हमारा कल्याण होता है, चैरिटी देने में दूसरे व्यक्ति का कल्याण होता है। तो चैरिटी और दान में अंतर समझा, चैरिटी भी एक करणीय कार्य है, हम पर एक ऋण है, समाज का ऋण है हम पर, तो समाज का ऋण चुकाना चाहिए। पांच प्रकार के जो ऋण हैं, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, उसके बाद भूत ऋण, प्राणियों का ऋण है, समाज का ऋण है, तो ऋण चुकाना चाहिए, लेकिन इसका कंपेरिजन दान से नहीं करना चाहिए। चलिए हम उसको हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये बलि महाराज का प्रश्न जो दान पर ही आधारित है, बलि महाराज बहुत महान बन गए, मनस्वी बन गए दान दे करके, तो आगे वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से बताए कश्यप जी कि प्रत्येक दिन ऐसे करते रहो, और 12वें दिन बहुत बड़ा भंडारा कराना, बहुत बड़ा जग कराना, बहुत बड़ा भंडारा कराना, ब्राह्मणों को, अपने सगे संबंधियों को, सब लोगों को बुलाकर खिलाना, उनको दक्षिणा देना, और इस प्रकार से 12वें दिन जब तुम यह कार्य कर लोगी तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तो जैसा कि कश्यप मुनि कहे थे, अन्य अन्य ही बातें इसमें से है कि जब हम पयोव्रत का पालन करते हैं उस समय प्रजल्प न करें, किसी का निंदा न करें, पापी व्यक्ति का मुख न देखें, उनके साथ संग न करें, इत्यादि इत्यादि बहुत से करणीय कार्य बतलाए गए हैं। अब अदिति वैसा ही की जैसा कि कश्यप जी बताए थे, अध्याय 17, इस 16वां अध्याय में 17वां अध्याय। श्री शुक उवाच इति उक्ता सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अनवतिष्ठत् व्रतम् इदम् द्वादशम् अतन्द्रियात्। अब 12 दिन तक इति उक्ता जैसा कि कश्यप मुनि कहे थे, यथार्थ एज इट इज, स अदिति हे राजन, यहाँ पर राजन शब्द कहा जाता है क्योंकि ये वामन अवतार का कथा है और बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। श्री वामन अवतारश्चरण त्वया सावधानतया श्रोतव्यम इति सूचयति संबोधयति इति राजन। राजन शब्द संबोधित किया गया हमारा परीक्षित को कि सावधानी से इस कथा को आप सुने, क्योंकि राजा का एक काम है दान देना, तो राजा को यह सबको सुनना चाहिए, लेकिन चूंकि महाराज परिचित से कथा हो रही थी तो राजा को संबोधित कर करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सब लोग जो यहाँ पर कथा सुनने आए हैं वो सावधान सावधानी पूर्वक कथा सुने, आंख खोल कर कथा सुने, आंख बंद कर कथा मत सुनिए, नहीं तो गए काम से, आंख खोल कर सावधानी से सुनिए। और यहाँ पर एक बात और है, परीक्षित महाराज से सुखदेव जी कहते हैं कि कैसे अदिति कथा सुनी थी, कहते हैं अतिंद्रिता, अतिंद्रिता मतलब आलस छोड़ करके, आलस छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए आलस रहित हो करके। जब आलस रहेगा तो भजन नहीं हो पाएगा। जैसे माता जशोदा, हम लोग दामोदर लीला का कथा सुने हैं, उसमें एक बात आई है कि जशोदा मैया कमर कस करके और भगवान के लिए मक्खन निकालने चली थी, हैं? रेशमी सूत्र नब्ध शब्द आया, सूत्र नब्ध, रेशमी धागे से रस्सी से अपने कटी प्रदेश को बांध ली थी। यह तो भजन करना चाहिए कमर कस करके, आलस के साथ में किया गया भजन भजन नहीं होता है। तो माता अदिति भी कमर कस करके और यह व्रत की, कहते चिंतयन्ति एकया बुधया महापुरुष ईश्वरम, कैसे व्रत कर रही थी अपने, यहां बताया गया कि एकांतिक भाव से वे भगवान गोविंद का चिंतन कर रही थी, महापुरुष का चिंतन कर रही थी, और अपने समस्त इंद्रियों को मन के हाथ में दे दी थी, और मन को जो रस्सी के समान है, लगाम के समान है, उसको बुद्धि के हाथ में दी थी। मनसा बुद्धि सारथी, बुद्धि को सारथी बना करके और यह व्रत कर रही थी। यह है एकांतिक भाव से भजन करना। हम सब लोगों को भजन वैसे ही करना चाहिए, बुद्धि को सारथी बना करके तब नाम जप करना चाहिए। जब हम नाम जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब बुद्धि सारथी बना रहेगा तो इन मन इधर उधर नहीं जाएगा, इंद्रियां इधर उधर नहीं भटकेगी। लेकिन जब सारथी न हो, रथ हांकने वाला न हो, यदि बुद्धि न हो, तो हरे कृष्ण कर रहे हैं, मन कहीं अन चला गया है, इधर केवल माला हो रहा है, जप नहीं हो रहा है, माला हो रहा है, केवल मणि खींच रहे हैं आगे, मुख से आवाज भी आ रहा है लेकिन वहां पर मन नहीं है। तो इसलिए यहां पर प्रगृहेत इंद्रिय दुष्टास्म दुष्अश्व मनसा बुद्धि सारथी। हम लोगों को पगृह पूर्णतया बस में कर करके इंद्रियों को, यहां पर इंद्रियों का क्या दुष्ट, इंद्रियों को दुष्ट कहा गया है, और इसकी कल्पना की गई अश्व से। हम लोग प्रत्येक दिन प्रसाद खाने से पहले मंत्र बोलते हैं ना, जड़े इंद्रिया तहे का, दुष्ट मति कैसे है, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिया तहे काल, जीव फैले विषय सागरे, तार मध्य जिह्वाति लोमय सुडूर मति, सुडूर मति या दुष्ट मति दोनों एक ही होता है। तो इंद्रियों को यहाँ पर दुष्ट कहा गया है, और उसकी तुलना की गई अश्व यानी घोड़ों से। इंद्रिया हमारे घोड़े के समान है, और मनसा बुद्धि सारथी, मन जो है वो रश्मि है, रस्सी है, और बुद्धि को सारथी बना करके अदिति एकाग्र मन से भगवान वासुदेव समाधाय चचार ह पयो व्रतम। यहां पर सुखदेव गोस्वामी को आश्चर्य हो रहा था कि स्त्री जाति का हो करके भी अदिति इस प्रकार का पयो व्रत की, चचार ह पयो व्रत, हाँ मतलब उन्हें आश्चर्य हुआ कि हाँ कैसे हो गया स्त्री होकर के भी, क्योंकि प्राय देखा जाता है स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है, जैसे बच्चे और स्त्री इनका मन बड़ा चंचल होता है, इसलिए उनके मन को कंट्रोल में करने के लिए एक सारथी चाहिए, पति चाहिए, बच्चों के लिए पेरेंट्स चाहिए, सारथी चाहिए, क्योंकि मन को एकाग्र कर सके, लगा करके रखे एक जगह, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। धीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष कहा गया है, स्त्रियां भी धीर होती हैं, वे स्त्रियां जो अपने पति के साथ रहती हो। यानी अब ज्यादा हम अमेरिका में नहीं बोल सकते हैं इस बात को, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो शास्त्रों में कैसे वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए, आज पहले जमाने में इस शास्त्र में वर्णन किया गया है, ये सिखा क्यों बांधा जाता है, पुरुष लोग पहले हिंदू लोग सिखा बांधते थे, इसका मतलब क्या है, मन को हम कंट्रोल में करने के लिए बांधे हैं। वैसे ही स्त्रियां, स्त्रियों का सौंदर्य था बड़े बड़े बाल से, और वो चोटी गुस्ती थी, चोटी बांधने का मतलब क्या, मन को, अभी अभी ये बात आज कहूंगा यहां पर तो जूता मारेंगे, कहेंगे गड़बड़ हो गया है? लेकिन सत्य बात यही है। आमीन। मनुस्मृति में वर्णन किया गया है कि गाय जिसका पूंछ उसके खुर से स्पर्श करता हो, यानी जिस गाय का पूंछ पृथ्वी को स्पर्श करता है, वह कामधेनु है, और जिस स्त्री का बाल उसके पैर तक है, वह लक्ष्मी देवी है। तो इस शास्त्रों का, और पहले शौक था बाल रखने का, आजकल बाल कटाने का शौक है, अच्छा है, टकला बन जाओ हमारे जैसा, कोई बात नहीं, सबसे अच्छा है। एनीवे लेट्स नॉट गेट इन दैट। तो यहां पर कहते हैं वासुदेवे समाधाय, समाधाय समाधिष्ठ हो करके, समाधि की स्थिति कब आती है अष्टांग योग में? ये अंतरंग योग है, यानी प्रत्याहार के बाद ध्यान, धारणा और समाधि। प्रत्याहार का मतलब आहार नहीं, अब कुछ नहीं, खाना पीना की जरूरत नहीं है। जब हम प्रत्याहार के स्थिति पर आ जाएंगे तब भजन कर सकते हैं, यानी बाहर की वस्तुओं की जरूरत न पड़े है? और तब ध्यान, तब वस्तु का ध्यान होगा, ये महामंत्र का ध्यान होगा, ये नाम का ध्यान होगा। आज हम लोग इस नाम का ध्यान नहीं करते हैं तो एक फोटो सामने रखते हैं भगवान का। ये कहाँ शास्त्रों में बताया कि फोटो रख करके नाम जप करो? प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आजकल स्कान में देखता हूं मैं कई एक भक्त लोग वो हरे कृष्ण महामंत्र को रखते हैं या फोटो रखते हैं। एक ये चंचल मन का परिणाम है। स्थिर मन मतलब नाम जप करें और सुने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये साक्षात श्याम सुंदर हैं, ये नाम जो है विग्रह हैं, हैं ये विग्रह हैं, ठाकुर जी हैं नाम। तो नाम जप करने के लिए अन्य किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी की फोटो की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ठाकुर जी हैं। और ये तब संभव होगा जब मन ध्यान अपना प्रत्याहार की स्थिति पर रहेगा, यानी बाहर की वस्तु की जरूरत नहीं, तब ध्यान हो सकता है। और ध्यान जब होगा उस वस्तु का तब वह व्यक्ति वह वस्तु में धारण करेगी, तो कल धारणा। तो वैसे परिस्थिति में हम सर्वत्र उस वस्तु का दर्शन कर सकते हैं। और बाद में समाधि, वही वस्तु जो अंदर है वो बाहर दिखाई पड़ती है, वो कहलाता है समाधि। तो वासुदेव समाधाय समधि, सम मतलब सम्यक प्रकार से और धी मतलब बुद्धि। जहां पर बुद्धि वहां लग गई है तो स्वाभाविक है कि मन लगेगा। भगवान गीता में कहते मई एव मन आदत्त मयो बुद्धि निवेश, ए बुद्धि को निवेशित करना पड़ेगा। यहां पर समाधाय कहा गया है, समाधि की परिस्थिति में आ गई थी। चचार हयो प्रवर्त पयोव्रत, और इस प्रकार से वह अदिति पयोव्रत कर रही थी। अब उसके परिणाम स्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तस्य प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुष पीतवास चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। इस प्रकार से जब पयोव्रत को पूरा की अदिति, तब भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप से भगवान वहां पर आए। जब भगवान का दर्शन की अदिति, तम नेत्र गोचरम वीक्ष स उत्थाय सादरम नमामं भूमिकायेन दंडवत पृथ्वीवला। जिस प्रभु का ध्यान कर रही थी उन्हीं प्रभु का साक्षात दर्शन किया बाहर, जैसे ध्रुव महाराज जिन भगवान का अंदर ध्यान कर रहे थे उन्हीं भगवान का बाहर दर्शन किए। जब दर्शन की, तम नेत्र गोचरम वीक्ष, अपने आंख के सामने जब देखी तो अदिति सहसा उठ पड़ी, यानी मतलब कि बैठ करके नाम जप कर रही थी अदिति, बैठ करके व्रत कर रही थी, सो करके नहीं, खड़ा होकर के नहीं, चलते हुए नहीं, बल्कि बैठ कर करके। वास्तव में भजन में, भजन का कोई भी अंग हो, चाहे श्रवण हो कीर्तन हो, इस समय बैठ करके जो है, जैसे नाम जप करना है, बैठ करके किया गया नाम जप सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है। यदि वो न कर सके तो सेकेंड बेस्ट है, चल कर कीजिए। यदि वो भी नहीं कर सके तो सोकर भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप करो। खाईते पीते सुईते यथा तथा नाम लोय, देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि होय। किसी प्रकार से नाम जप करना चाहिए, कैसे भी, इतना छूट है नाम जप करने में। लेकिन पयोव्रत के लिए नहीं, सो करके पयोव्रत नहीं होगा, बैठ करके ही पयोव्रत। यहां पर सह उत्थाय सादरम, बैठी हुई थी और तुरंत उठी, और आदर के साथ में प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम को रिकमेंड नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर दिखाया जाता है कि अदिति भगवान को दंडवत प्रणाम की। ये दंडवत प्रणाम की, इसके पहले देखिए, तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसा उत्थाय सादरम। सहसा उनके लिए आश्चर्य हुआ और उठ करके, जब ऐसे कोई चीज एकाएक प्राप्त हो जाता है तो क्या सही है और क्या गलत है ये बात नहीं पता चलता है, सहसा जब हो जाए तो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार 77 था। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और वो तमाल का जो पेड़ है वहां पर बैठ करके औराहा श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे थे। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आए, हमारे पास महेंद्रा का मेटाडोर था, और जब हम सुने कि प्रभुपाद जी हैं और प्रभुपाद जी मंदिर में हैं, उनके रूम में जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वहां पर जय विजय खड़े थे, कोई जा नहीं सकता है वहां पर, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कोई जा नहीं सकता था। लेकिन मंदिर में प्रभुपाद जी हैं और दर्शन कर रहे हैं। उस समय 4:30-5 बजे का समय होगा, कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और राधा रमण महाराज थे, हम थे और तमाल कृष्ण प्रभु थे। तो मैं संकीर्तन से आया था और जब मैं सुना तो भाग करके आया सीधे वृंदावन हम दर्शन करने के प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी तमाल वृक्ष के नीचे बैठ करके राज श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे थे, और मैं सहसा आ करके प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो मेरा पैर राज श्याम सुंदर के साथ, प्रणाम ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसमें बुद्धि काम नहीं किया, सही क्या है गलत क्या है, सीधे ऐसे प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया तो मेरा पैर भगवान की तरफ था। तो प्रभुपाद जी वहां पर जो लोग थे, आई रेम्बर भावानंद सद्धन्य दो लोग थे वहां पर, त्रिविक्रम महाराज, तो प्रभुपाद जी उन लोगों को कहे कि इसको बताओ है? कि उधर भगवान है, भगवान तरफ पैर नहीं करना चाहिए। तो वो लोग अंग्रेजी में बताए, लेकिन मुझे उस समय अंग्रेजी बड़ा पढ़ना जानता था मैं, लेकिन बोलना और समझना नहीं जानता था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी बुलाए, आज ही मुझे सोचता हूँ तो उनकी बातें कान में आती है, और उन्होंने कहा कि उधर ठाकुर है, ठाकुर तरफ पैर नहीं करने का। ये प्रभुपाद जी की वाणी, ठाकुर तरफ पैर नहीं करने का, और वो बंगाली हिंदी था, तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं राधारमण से पूछा, तो राधारमण हमको समझाए कि प्रभुपाद जी तब तो, तब से मैं कान पकड़ लिया कि ऐसे प्रणाम नहीं करने का। एनीवे, तो मैं सहसा शब्द का बात कह रहा था कि जब सहसा कुछ ऐसी बात हो जाता है तो उसमें सही क्या है और गलत क्या है वो हम नहीं नापते हैं। तो अब जब देख करके नमाम भूवि कायेन दंडवत पृथ्वी वाला आनंद के साथ में विह्वल होकर के माता अदिति पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करने लगी। वो नहीं सोचे कि नहीं नहीं स्त्री हूं मैं और मुझे दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, उन्होंने उसमें सोचा भी नहीं, एकदम जोश में आकर के, जोश में होश नहीं रहता है तो जोश में आकर के उन्होंने प्रणाम कर लिया। एनीवे, प्रणाम करने के बाद जब उठी तो हाथ जोड़ करके पुनः प्रणाम कर रही थी और भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रही थी, हालांकि दर्शन पैरों से शुरू की थी और भगवान के मुखारविंद दर्शन कर रही थी और उनके आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। यहां पर प्रत्यासनय गदगदया गिरा हरि तुष्टावसा देव्य अदिति कुरुद्वह उद्विक्षति सा पिवती व चक्षुषा रमापति जग्पति जगतपति। यहां पर एक शब्द आया हुआ है, जब वो भगवान का दर्शन कर रही थी प्रत्यया प्रेम के साथ में, उनका जो गला था वह चौकअप हो गया, गदगदया गदगद हो गई थी। वो भगवान के लिए प्रार्थना करना चाहती थी लेकिन वाणी नहीं निकल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान को देखे तो भगवान का प्रार्थना करना चाहते लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। इनके आंखों से अश्रु धारा बह रहा था, आनंद का माहौल था और रोमांच कंबा अश्रु सब कुछ, अश्रात्यों की विकार इनमें उत्पन्न हो गया था। तो एकटक भगवान की तरफ देख रही थी तो उद्विक्षति सा पिबती सचक्षुषा, अपने आंख से मानो भगवान को निगल जाएगी, वो पी रही थी। है चक्षुषा पिबती कर्ण पिबती हरि सुधामृतम्, आंख से और कान से हरि कथा का पान करना चाहिए। कोई कह सकता है कि कोई चीज हम पीते हैं तो मुंह से पीते हैं ना, आई मीन पानी पीते हैं तो मुंह में पीते हैं, आंख में थोड़े कोई पानी डालता है पीने के लिए। लेकिन भगवान का पान हम किसी अंग से कर सकते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों में से, आंख से भी भगवान का पान कर सकते हैं, कान से भी हरि कथा का पान कर सकते हैं, जिह्वा से तो प्रसाद का पान करते ही हैं डेली, इसमें तो कोई बात नहीं है, नाक से भी भगवान के चरणों में चढ़े हुए सुगंधित पुष्पों का पान कर सकते हैं। तो यहां पर चक्षु से उन भगवान का, जो लक्ष्मीपति हैं, यज्ञपति हैं, जगतपति हैं, उन भगवान का वो पान कर रही थी। अब प्रार्थना करना शुरू की। अब तक से कुछ नहीं कर पा रही थी, आंखों से अश्रु धारा बह रहा था, गला चौकअप हो गया था, वाणी गदगद हो गई थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। अब संभाल करके अपने को भगवान से प्रार्थना करते, भगवान की कृतज्ञता ज्ञात कराती है। कहते जगेश यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक विजिनो अपसनोम आद्य समना कृधि सह भगवन सिदीननाथ। कहते जगेश, हे प्रभु आप तो यज्ञेश हैं, आप तो यज्ञ करने से बड़ा बड़ा अश्वमेध यज्ञ सुमेध यज्ञ ये सब यज्ञ होता है तब आप प्रकट होते हैं, मैंने तो कोई यज्ञ नहीं किया, मैंने तो पयो व्रत किया और आप उससे ही प्रकट हो गए। आप यज्ञेश हैं, आप यज्ञ पुरुष हैं, आप अच्युत हैं, आप तीर्थपाद हैं। अच्युत शब्द का यज्ञ पुरुष यज्ञ वही पुरुष इति यज्ञ पुरुष, भगवान यज्ञ पुरुष हैं। भागवतम में वर्णन किया गया है वासुदेव परामखा, वासुदेव ही जो विष्णु हैं वे यज्ञ के आराध्य हैं यज्ञ के द्वारा। और अच्युत, अच्युत शब्द भक्त के रक्षार्थ यहां पर अदिति जी कहते हैं, न चमन्ति भक्ता यस्य तथा भूतम भक्त रक्षकम इति अर्थ अच्युत। जय श्री श्री गोविंदाय की जय। तो भक्तों के रक्षा संबंधी यहां पर अच्युत शब्द आया हुआ है। उसके बाद कहते हैं हे तीर्थपाद, भगवान को तीर्थपाद कहते हैं, उनके चरणों में सब तीर्थ निवास करते हैं और भक्तों को भी तीर्थपाद कहते हैं, तीर्थपादीय कहते हैं। जैसे विदुर जी जब गए थे भ्रमण करने के लिए और जब आए तो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी का गुणगान कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे और उसमें कहें तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि। अरे आपको तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत क्या है, लेकिन आप तीर्थों को पवित्र करने के लिए गए थे, क्योंकि अब तीर्थपादी हैं। तो भक्त को कभी कभी प्रभुपाद, विष्णुपाद, तीर्थपाद कहा जाता है। तो ये यहां पर तीर्थपाद कहा गया है, कृष्ण तीर्थपाद हैं, जो समस्त तीर्थों जिनके चरणों में निवास करते हैं वे तीर्थपाद करते हैं। और तीर्थ श्रव, और जो तीर्थों के आश्रय हैं, यानी साधु महात्मा लोग तीर्थ होते हैं। तीर्थ मतलब जो पवित्र करें। हम जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, ये तीर्थ स्थल ही है, वहां जाने से पवित्र लोग होते हैं और साधुओं की संगति से पवित्र होते हैं। तीर्थ श्रव, श्रवण मंगलम नाम धेय। हे प्रभु, आपका कथा ये मंगलकारी है। जो व्यक्ति भगवान का कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, माता अदिति का श्रवण मंगलम नाम धेय, आपके नाम का उच्चारण, आपका कथा, ये सब मंगल है। ऐसे ही गोपी गीत में स्मृति राधिका भी यही बात गाई है, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि ग्रन्थे भूरिदा जना, श्रवण मंगलम। वैसे ही सुत गोस्वामी कहते हैं, श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये पुण्य है। कथा करना, कथा कहना, कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, तो कहते श्रवण मंगलम। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, जो अपना मंगल, जिसके मंगल कामना है, जो सुख शांति चाहता है, उसे चाहिए भगवान का कथा सुने और नामधेय, भगवान के नाम का उच्चारण करें। ये सब शुभ चीज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कहते हे प्रभु, जो आपके शरण में आते हैं, आप उन लोगों के दुख को दूर करने वाले हे दीनानाथ, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से माता अदिति भगवान को प्रणाम की, भगवान को प्रणाम की तो भगवान कुछ कहना चाहते थे, लेकिन माता अदिति बड़ी अधीर थी, वो दुख से पीड़ित थी। दुख के चलते भगवान का वो आराधना की थी, पयोव्रत का आराधना की थी, पयोव्रत के द्वारा भगवान की आराधना की थी दुख के चलते। और दुख क्या था, बच्चे लोग भिखारी बन गए थे, हैं? सब कुछ बलि महाराज ले लिए थे, इन लोगों के पास रहने के लिए थोड़ा भी जमीन नहीं था, उतना ही नहीं, बहुरुपया बनकर घूम रहे थे, हैं? अपना छद्मवेश छिप गए थे, छिप गए थे। तब भगवान माता अदिति को आश्वासन देते हैं, जो भी प्रचारक हैं, प्रचारकों को सीखना चाहिए कि हम कैसे प्रचार करें। ये पूरा सेक्शन जो बलि महाराज का है, भगवान प्रचारक बनकर के आए हैं और हम लोगों को सिखाए हैं कैसे प्रचार करना चाहिए। हम लोगों के पास भी बहुत लोग आते हैं, किसी को कोई तकलीफ है, किसी कोई तकलीफ है, पत्नी ने डंडा मार दिया किसी को, बच्चों ने गाली दे दिया, किसी ने चीटिंग कर लिया, बहुत तकलीफ होता है। लोग आते हैं साधुओं के पास, मंदिर में आते हैं, तो कैसे प्रचार करना चाहिए सीखना चाहिए। अब डायरेक्ट हम फिलॉसफी झाड़ना शुरू करेंगे तो उसके भेजा में कुछ भी नहीं जाएगा, इधर जाएगा इधर निकल जाएगा। पहले संतावना देना बहुत जरूरी है। संतावना देने से व्यक्ति की मनस्थिति शांत हो जाती है, और जब मनस्थिति शांत हो जाती है तब हम लोग कुछ बात कह सकते हैं, तब व्यक्ति सुन भी सकता है। नहीं तो मनस्थिति शांत न रहे तो कुछ भी हम कहें लेकिन मन तो वहीं पर लगा हुआ है, तो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसलिए प्रचारकों को बड़ा अलर्ट रहना चाहिए किसे कैसे हम डील कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए भगवान कहते हैं, देव माता, देव माता भवत्या में विज्ञातम चिरकांचितम। हे देव माता, आपकी क्या इच्छा है इसको मैं जानता हूं। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते। भगवान कहते हैं गीता, वेदाहम संस्थितानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, मैं सब कुछ जानता हूं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों भगवान जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूं माता कि आपकी क्या अभिलाषा है। आज ऐसा समय है कि आपके पुत्र गण समस्त ईश्वरों से विहीन हो चुके हैं, उनका धन दौलत छीन लिया गया है उनके प्रतिद्वंदियों के द्वारा, उनके दुश्मनों के द्वारा, और अपने घर द्वार को छोड़ दिए हैं। मैं जानता हूं आप यही चाहती हैं ना कि उन लोगों को उनका धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाए, और आप ये भी चाहती हैं कि लड़ाई जब हो तो लड़ाई में वे लोग मारे जाएं तो उनकी पत्नियां रोएं। तो ये सब बात जो उनके दिल में था उस बात को भगवान बताए, संतावना दिए कह करके। जब संतावना भगवान दे लिए तब माता अदिति से असली बात अब भगवान कहने जा रहे हैं। जो बात भगवान कहना चाहते थे अब कहने जा रहे हैं। कहते हैं, प्रायो अधुना ते असुरजूथना था अपारणीया इति देवी मे मति, यत्ते नकुलेश्वर विप्रगुप्तः न विक्रमः तत्र सुखम् ददाति। हे माता, आप चाहती हैं कि लड़ाई हो और लड़ाई में असुर लोग मारे जाएं, आपके पुत्रों को सब प्राप्त हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये लड़ाई जो है आज के दिन न विक्रमः तत्र सुखम् ददाति, शक्ति के उपयोग से यानी लड़ाई से आज सुख नहीं मिलेगा। आज के दिन लड़ाई उचित नहीं है। क्यों? कहते हैं प्रायो अधुना ते असुरजू तो ना था अपारणीय इति देवी वेमति। हे देवी, मैं समझता हूं कि आज के दिन असुरों में जितनी शक्ति है संसार में किसी में उतना शक्ति नहीं है। उन लोगों को आज परास्त करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो मानो अदिति पूछती है कि ये कैसे हो गया, ऐसा शक्ति उन लोगों कहां से प्राप्त हो गया। तब तो भगवान कहते हैं यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्त, आज के दिन उनके अनुकूल हैं, उन पर कृपा दोनों हाथ से कृपा बरसा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? ईश्वर विप्रगुप्त। आज वे लोग रक्षित हैं भगवान और ब्राह्मणों से। तो जिस व्यक्ति पर गुरु और कृष्ण का कृपा हो, वैष्णव और कृष्ण का कृपा हो, उस व्यक्ति को संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। माया बलवती है, लेकिन बलवती माया भी उस व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकती है जिस पर गुरु और कृष्ण का कृपा हो। इसे यह बात प्राप्त करनी चाहिए, सीखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। आज के दिन यदि आप सोचते हो लड़ाई हो, लड़ाई से कोई फायदा नहीं, इससे किसी को सुख प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि किसी प्रकार से हमें गुरु और कृष्ण का कृपा प्राप्त किया जा सके। और गुरु और कृष्ण का कृपा तब प्राप्त करेंगे जब हम उनके बातों का अनुसरण करें, उनके आज्ञा का पालन करें। जब आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु के आज्ञा पालन करेंगे, तो गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं आज्ञा पालन से। गुरु मुख पद्म वाक्य चितिते करियाख्य आर ना करीबो मने आशा। जब यह भावना हमारे दिन में हो जाए कि और कोई आशा नहीं है, करे गुरु और वैष्णव का आदेश ही मैं पालन करूंगा, तब भगवान भी खुश हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग जब प्रणाम करते हैं, यदि कोई व्यक्ति, मैं देखता हूं कभी कभी भक्त लोग सीधे आकर के भगवान का नाम लेकर के प्रणाम करना शुरू करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते तप्त कांचन गौर। ये प्रणाम करने की विधि नहीं है। यदि इस मंत्र से आप प्रणाम करोगे, तो ऐसे बहुत लोग हैं कृष्ण को प्रणाम करने वाले, गली गली में लोग कृष्ण को प्रणाम करते हैं ऐसे मंत्र से, गोविंद जय जय गोपाल, यहां जाओ देखो इंडिया में सब जगह ऐसे ही प्रणाम करते रहते हैं। लेकिन यदि कोई प्रणाम करता है नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, प्रभुपाद जी का नाम लेकर कोई प्रणाम करता है, तो भगवान देखते हैं अरे कौन है जो हमारे शुद्ध भक्त को याद कर रहा है। भगवान देखते हैं, तो भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है। लेकिन हे कृष्ण करुणा से दृष्टि नहीं पड़ेगी, बहुत लोग ऐसे करने वाले हैं, भगवान समझते हैं उसमें से एक भी ये भी है कुछ मांगने आया होगा। लेकिन प्रभुपाद जी का नाम लेकर प्रणाम करेंगे, हाँ हमारे शुद्ध भक्त का। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो, जस्या अप्रसादाद नगति कुतोपि। तो भगवान जहां पर वैष्णव और कृष्ण की कृपा हो, वहां कोई दुख नहीं आएगा। भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं उन भक्तों के जीवन में, न तो माया हस्तक्षेप करती है, क्योंकि उनके रक्षक कृष्ण और ब्राह्मण जब हो तब। लेकिन हे माता, आपने यह बड़ा संतोष के साथ में व्रत किया है, और ये तो विफल नहीं हो सकता है ना। आपने जो व्रत किया है, आपके पति ने बताया है, जैसा उन्होंने बताया है, आपने यथार्थ रूप से वैसा ही पालन किया है, और परिणाम क्या है कि मैं यहां आ गया हूं। जैसा आपके पति बताए वैसा आपने पालन किया, उसके परिणाम स्वरूप मैं यहां पर आ गया हूं। लेकिन आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन मेरे समझ से आज लड़ाई करना उचित नहीं है। तो मानो माता अदिति दुखी हो रही थी, अरे बाप रे बाप, इतना कठिन परिश्रम करके तपस्या किया, और अंत में कहते हैं कि मैं कुछ करूंगा ही, लड़ाई नहीं करूंगा, तो सब खराब हो गया। तो भगवान संतावना दिए कि नहीं, धैर्य धारण करो माता, धैर्य धारण कीजिए, मैं जरूर आपके दुख को दूर करूंगा, लेकिन लड़ाई करके नहीं, लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान जानते हैं कि किसका किस में कल्याण है, और वैसा ही रूप धारण करते हैं, क्योंकि कई एक चीज इस अवतार में कई एक चीज भगवान किए हैं। आप लोगों को याद होगा, बृहस्पति जी से देवताओं ने पूछा था कि जब बलि की इतनी शक्ति हो गई है, हम लोग यहां से चले जाएंगे तो लौट कर कब आएंगे, चाहे कितना दिन हमको वनवास में रहना है। तो बृहस्पति जी क्या उत्तर दिए थे, याद है, लिखे आप लोग आए, जब आज ये लोग बलवती हैं क्योंकि इन पर ब्राह्मणों का कृपा है, और जब इसका उल्टा हो जाए, विपर्य शब्द आया हुआ है, विपरीत हो जाए, कोई ब्राह्मण नाराज हो जाए, तभी लोहा लोहा को काटता है, ब्राह्मण को क्षत्रिय नहीं मार सकता है? तो ब्राह्मण को ब्राह्मण ही मारेगा। तो इसलिए माता चिंता मत करो, मैं आपके बेटा के रूप में आऊंगा, और आ करके आपके दुख को दूर करूंगा। और तब तक से जब तक समय आ नहीं जाता हूं, भगवान कहते हैं कि आप कृपा करके कहते हैं कि मैं कश्यप मुनि के हृदय में आऊंगा, उनके वीर्य से आपके गर्भ में स्थित होऊंगा, लेकिन मेरे इसी रूप को आप कश्यप मुनि में देखना, यानी कश्यप मुनि के आश्रम में ही रहो। अदिति इसके प्रमाणित करता है कि अदिति को पुत्रों से बड़ा स्नेह था, इसलिए पति का आश्रम छोड़कर के पुत्रों को बंगलों में चली जाती थी स्वर्ग लोक में। तो भगवान कहे कि अब तो जाने का रास्ता भी नहीं है, और अब जितना दिन रहोगी अब कश्यप मुनि के साथ में ही आप रहो, इनके इनमें मेरा दर्शन करो, जैसे आप मुझे देख रही हो ना ऐसा ही दर्शन इनमें आप करो, और कालांतर में मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। भगवान फिर कहते हैं, न एतत् प्रश्मा आख्यम पृष्ठापि कच्चनम सर्वसंपते देवी देह कुयम सुसंवृतम। कहते हे माता, हे देवी, इस बात को गोपनीय रखना, इस बात को दूसरों को मत बताना है? नहीं तो लोग पहले मानेंगे नहीं, और ये जो मंत्र है वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे आप गुप्त रखना, तभी यह सफल होगा। इतना कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जैसा कि भगवान बताए थे, माता अदिति अपने पति में भगवान का दर्शन करते हुए और उनका दर्शन कर रही थी और उनका खूब सेवा कर रही थी। भगवान बताए कि तुम सेवा करते रहना। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो एक श्लोक बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें ये बात बताया गया है कि आप उनका सेवा करना। हाँ, अथा पायो मम देवी चिंतयन संतोषितस्य व्रतर्चयाते ममार्चनम नारहति गंतुम अन्यथा श्रद्धानुरूप फल हेतु कल्पता। स्वांसेन पुत्रम उपेत्यते सुतान गुप्तास्मि मारिच तपस्यधिष्ठः। आप उनका सेवा करते हुए मारिच तप कश्यप मुनि का सेवा करते हुए और उनमें मन लगा करके स्थित रहिए, मन से सेवा कीजिए, मेरा उनमें दर्शन करते हुए मन से सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से जब वो सेवा कर रही थी तो कालांतर में उनके गर्भ में भगवान आए। जब गर्भ में भगवान आए तो सब देवता लोग जान गए कि भगवान अब आ गए हैं, और ब्रह्मा जी आ करके और भगवान का स्तुति कर रहे थे जब माता अदिति के गर्भ में भगवान थे। और उसके बाद में भगवान वामन देव का अवतार हुआ है, तो अभी थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में वामन अवतार का लीला हम लोग शुरू करेंगे। अवतार दामोदर ऐसा है, कम ऑन। भगवान आए माता अदिति के गर्भ में, ब्रह्मा जी आदि देवतागण उनका स्तुति किए। अब अध्याय 18, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं विरिञ्चः अस्तुत्यकर्म वीर्यः प्रादुर्भुव अमृतभूरि आदित्यं चतुर्भुजं शङ्खगदाब्ज चक्र पिसंगवासा नलिनाय तेक्षण। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति कर लिए तब प्रादुर्भूत भगवान प्रकट हुए। कैसे भगवान है? कहते हैं अमृत, अमृत भू, मृत मतलब मरना और अम मतलब अमर। वे भगवान जो अमर हैं, जो कभी मरते नहीं हैं, वे भगवान प्रकट हुए। भगवान का प्रकट, भगवान कौन है? भगवान मरते नहीं है, यहां पर क्लियर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान का प्रकट कौन प्रकट हुआ? अमृत भू, जो कभी मरता ना हो, जो मृत्यु से परे हैं वे भगवान आए। आदित्य, अदिति माता के गर्भ से वे उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए? कहते चतुर्भुजम शंख शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए थे, पीताम्बर पहने हुए थे, और उनकी आंखें जो थी कमल के पंखुड़ी के समान सुंदर लग रही थी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। आजकल किसी को बच्चा हो जाए चार हाथ वाला, सब टीवी वाले आ जाएंगे, हैं? सब न्यूज़पेपर वाले आ जाएंगे, डेली यहाँ पर पब्लिसिटी होगा। भगवान ऐसे आते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, भगवान चतुर्भुज रूप में क्यों आए? भगवान चतुर्भुज रूप में इसलिए आए माता अदिति के शंका को दूर करने के लिए कि मैं वही हूं जो कि आपको वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, तो मैं वही आया हूं। दूसरा कोई किसी को भेज नहीं दिया हूं, मैं ही आया हूं। आप देखेंगे तीनों समय में, ये अंतिम नहीं, दूसरा अवतार था, तीसरा अवतार है कृष्ण का। तीनों अवतार में जब यज्ञ पुरुष के रूप में आए, उस समय भी चतुर्भुज रूप में आए। जब सुतपा और पृश्नि के पुत्र के रूप में भगवान प्रथम बार आए यज्ञ पुरुष के रूप में, तो पहले चतुर्भुज रूप में आए। उसके बाद यहां वामन अवतार में भी चतुर्भुज रूप में आए। वैसे ही देवकी के पास भी भगवान चतुर्भुज रूप में आए, और देवकी को संतावना देने के बाद भगवान बतलाए कि किस प्रकार से आप लोग पूर्व मन्वंतर में आप सुतपा और पृश्नि नाम के प्रजापति थे, आप लोग निष्काम भाव से मेरी पूजा की और मैं प्रसन्न होकर के आपके सामने प्रकट हुआ। आपने ग्राम सुख यानी इंद्रिय सुख न मांग करके मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था, और मैंने आप लोगों को देने का वचन दे दिया। लेकिन बाद में सोचा, अरे मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, क्या करूं? तो इसलिए मैं आपके पास तीन बार आया। जब किसी को हम कह देते हैं कुछ देने का, नहीं दे पाते हैं तो तीन गुना देना चाहिए बाद में। तो तीन बार मुझे आना पड़ा। प्रथम बार मैं यज्ञ पुरुष के रूप में आया, दूसरे बार उपेंद्र के रूप में आया, बावन के रूप में, और इस बार कृष्ण के रूप में, यानी इस रूप में आया हूं। तो ये दूसरा अवतार है। अन्य बहुत अवतार हैं, लेकिन साक्षात नारायण के जो अवतार हैं, ये दूसरा अवतार है। अब उनका शरीर का कांति कैसा है? भगवान के श्रृंगार का वर्णन, चतुर्भुज रूप में आए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और उनका आंख जो है कमल की पंखुड़ियों के समान उनकी आंखें हैं। श्याम वर्ण के भगवान हैं, मेघ श्यामल, मेघ के समान श्यामल भगवान का वर्ण है। एक बार मेघ गए समुद्र के पास और समुद्र से कहे कि हे समुद्र के देवता, अरे हम लोग सुने हैं कि आप में भगवान शयन करते हैं, आप उनका शयन स्थली हैं। भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, गर्भ सागर में शयन करते हैं, आप उनके शयन के स्थली हैं, तो भाई हमको भी थोड़ा एक दिन भगवान को दिखा दो। बहुत लोग देखना चाहते हैं, जाते हैं, कहते हैं महात्मा जी, महात्मा जी भगवान दिखा दीजिए। वैसे ही मेघ भी गए एक बार कि हमें भगवान को दिखा दो। तो समुद्र देवता ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं क्या कह रहे हैं। तब बाद में समुद्र तक आकर कहे कि भाई देखो, तू भगवान को देख सकते हो लेकिन उनका कुछ सेवा करना पड़ेगा, बिना सेवा के देख नहीं सकते हो। तो बताइए क्या सेवा करूं? तो कहते हैं भगवान खुश होते हैं जब उनके संतान का हम लोग सेवा करें, उनके संतान को हम सुखी करें, उनको कृष्ण भावना दें लोगों को, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। सब प्राणी उनके संतान हैं, मैं भी सेवा करना चाहता हूं। मेरी लालसा है कि मैं सेवा करूं भगवान का, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। ये तुम मेरा सहयोग करोगे ना, तो हम दोनों मिल करके भगवान का सेवा करेंगे और तब तुम भगवान का सेवा दर्शन कर सकते हो। तो मेघ ने कहा कि बताओ क्या करना चाहिए। तो समुद्र ने कहा कि देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हूं सूर्य देवता से, हमारा पानी नमकीन है, हम चाहते हैं लोगों का कल्याण करें लेकिन पानी नमकीन है, तो सूर्य देवता रेडी हैं हमको वाष्पीकृत करने के लिए, लेकिन स्टोर हाउस नहीं है कहीं पर, तो तुम इसको धारण करो, तुम इसे धारण करो और समय पर उसे देना। तो मेघ ने कहा कि ठीक है मैं करूंगा। तो नमकीन जल को वाष्पिक जब कृत किया गया तो मेघ ने क्या किया, नमक को पी गया और मीठे जल को हम लोगों को दिया। यही संत का लक्षण है। संत जो होता है वह कष्ट सहता है लेकिन दूसरों को सुख देता है। जो सज्जन होते हैं वो स्वयं सुख भोगते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं, और जो दुर्जन होता है दूसरा भले जहन्नम में जाए हम सुखी रहें। तो संत, सज्जन और दुर्जन, भगवान संतों से बड़े प्रसन्न रहते हैं। संत जो दुख सह करके और दूसरे को सुख दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पड़ायो जानी रे, पर दुख दुखी। और सज्जन, मैं ही मलाई पिस्ता खा रहा हूं तुम भी खाओ कोई बात नहीं, और दुर्जन मैं खाऊं तुम मरे मरो। तो मेघ जब संत बन गए तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए मेघ से, अरे तू तो संत आदमी है। तो भगवान संतों को अपने हृदय में रखते हैं और संत भी भगवान को अपने हृदय में, संता सदैव हृदये सुबिलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एक वैष्णव कवि गाए हैं, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव अपराण। तो भगवान के हृदय में संत रहते हैं और संत के हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान को अच्छा लगता है धारण करना और भक्तों को अच्छा लगता है धारण करना, जैसे जमुना जी, बलराम जी। बलराम जी कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वे कृष्ण जो अपना वस्त्र धारण करते हैं बलराम जी, वो नीलांबर धारण करते हैं क्योंकि कृष्ण नीले वर्ण के हैं। भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए पीताम्बर धारण करते हैं, राधारानी तप्त कांचन गए। जमुना जी कृष्ण की प्रियसी हैं, वो भी नील वर्ण की हैं क्योंकि कृष्ण, और कृष्ण श्याम वर्ण धारण किए क्योंकि मेघ बहुत सेवा किया था, इसीलिए कृष्ण को हमेशा मेघ से उपमा, उनके शरीर की कांति का उपमा दिया गया है मेघ से। श्यामल मेघ कांति, एनीवे तो श्याम वर्ण के भगवान हैं, कान में मकराकृत कुंडल लगा हुआ है भगवान, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। वैजयंती माला वह माला है जिसमें पांच प्रकार के अलग अलग पुष्प से बना हुआ जो माला होता है वो वैजयंती माला कहलाता है। और भगवान श्री वत्स वक्षा, भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, ये परमानेंट चिन्ह है। ऐसे कभी कभी आजकल वो क्या टट्टू बोलते हैं, टट्टू ना है, टैटू है। मैं जब जन्म लिया था तो उसमें मेरी माँ पता नहीं क्यों गलती से या सही से मेरे यहाँ पर एक काला वो क्या बोलते हैं टीका लगवा दिया, टट्टू वाला, टट्टू क्या बोलते हैं, टट्टू जो भी आजकल इधर बहुत छपवाते हैं ना,
जब मेरे पिताजी देखे तो वो बहुत नाराज हुए और लगे इसको छुड़ाने के लिए। मेरा ये इतना बड़ा हो गया था लेकिन उन निकला नहीं आता कि यहाँ पर काला है। तो एक बार अब छाप लग जाता है कुछ चीज तो परमानेंट हो जाता है। तो भगवान के वक्षस्थल पर एक छाप है, श्रीवत्स वक्ष, भगवान के वक्षस्थल पर एक छाप है, वो श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स का मतलब क्या है? श्री जस्य वत्सा इति श्रीवत्स। श्री मतलब लक्ष्मी जी और वत्सा मतलब पुत्री। लक्ष्मी श्री जस्य वत्सा, श्री जिनकी पुत्री हैं वो कहलाते हैं श्रीवत्स। और श्रीवत्स हैं भृगु मुनि। भृगु मुनि की एक पुत्री थी जिसका नाम था श्री। तो श्री जस्य वत्सा इति श्रीवत्स। अब एक कथा कहां से आ जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में एक बार प्रयाग में कैसे साधु समाज में झगड़ा हो रहा था, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, है? तो भृगु मुनि बिना उठाए कि मैं जाऊंगा पता लगाने के लिए कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। तो वे गए भगवान शिव के पास, तो प्रणाम वणाम नहीं किए, भगवान शिव उनको आलिंगन करने आए। कहे तुम हिप्पी आदमी है, तुमको कौन आलिंगन करें, भागो। भगवान शिव को गुस्सा आया, त्रिशूल उठा लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किए, क्या कैसा बेटा है, सदाचार इसको नहीं है, उदंड लड़का है। उनको भी गुस्सा आ गया। अब पहुंच गए सीधे क्षीर सागर में, गर्भ समुद्र में, क्षीर सागर में, जहां पर लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रही थी। भगवान पहुंच गए वहां पर भृगु मुनि, और जा करके सीधे भगवान के वक्षस्थल पर अपना पैर रख दिए, पैर रख दिए। तो भगवान जगे, देखे तो ब्राह्मण देवता आ गए हैं, पैर पकड़ लिए। भगवान को ग्लानि हो रही थी कि हमारे घर पर अतिथि आए, हम इनका सत्कार नहीं कर पाए। भगवान अब सॉरी बोलने ही वाले थे, कुछ मना रहे थे, बात कर रहे थे, तब तक से लक्ष्मी जी का भ्रुकुटी सात आसमान पहुंच गया कि ये कौन होता है पंडित, अपने क्या समझता है, आकर के प्रभु के वक्षस्थल पर सीधे पैर रख दिया। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम लोग घरों में कभी नहीं जाओगे, ब्राह्मणों क्या भिखारी बन के रहो। भगवान ने कहा ये बना हुआ काम बिगाड़ दिया लक्ष्मी जी ने। कभी कभी स्त्रियां बोल देती हैं, कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बोल देती हैं। स्त्रियों को एक ही व्रत धारण करना चाहिए और वो है मौन व्रत, और कोई व्रत नहीं, बोल देती हैं। अब वो नहीं बोले तो कुछ दूसरा काम होता, अब बोल दी, श्राप दे दी। भगवान ने कहा बना हुआ काम बिगाड़ दिया। तब भगवान ने कहा कि हे प्रभु, आप अनुग्रह कर कर हमारे पास आए, हम अति सत्कार नहीं कर पाए, लेकिन आपका जो ये श्री चरण है वो सदैव मेरे वक्षस्थल पर रहेगा, जब भी अवतार में लूंगा तो वहां पर वो रहेगा। इस प्रकार से भगवान ये श्रीवस्त्र धारण किए। और इधर भृगु मुनि जब आ गए इलाहाबाद प्रयाग में और सब बात बता लिए, क्या क्या सब क्या हुआ, तब भृगु मुनि बड़े उदास हो गए। सब ऋषि लोग कहे क्या हो गया, अरे आप तो बड़ा अच्छा काम किए हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। कहे काम क्या हुआ, कितना शक्ति लगा मैं जानता हूं, हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, सब तप खत्म हो चुका, जितना तपस्या किया था सब खत्म हो चुका, अब मुझे तपस्या करना है। आप साधु समाज ऋषि लोग बताइए कि कौन ऐसा स्थली है जहां पर जाकर के हमें तपस्या करनी चाहिए। तो ऋषियों ने उनको एक छड़ी दिया, लकड़ी दिया, और कहा कि इस लकड़ी को आप लेकर ब्रह्मांड में जाइए, और जहां पर ये लकड़ी हरा हो जाए वही स्थली है जहां पर आप तपस्या करना। यहां पर कोई बिहार का है? कोई बिहार का नहीं है कोई? अरे यहां पर वो तो मैं जानता हूं, मैं बिहार से हूं, लेकिन और कोई यहां पर? एनीवे बिहार में एक स्थली है बलिया, बलिया जिला गंगा जी के किनारे है। जब पूरे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते भृगु जी वहां पर आए उस स्थान पर, तो वह जो छड़ी था वो हरा हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा
बलिया, जो बल देने वाला हो, बलिया। और आज ये भृगु जी का आश्रम है, स्कान को हम लोगों को 12 एकड़ जमीन मिला हुआ है अभी वहां पर, तो बड़ा अच्छा स्थल है, गंगा जी किनारे, तो भृगु जी का आश्रम वहां पर है। एनीवे, तो भृगु जी को भगवान आशीर्वाद दिए और वह चिन्ह हमेशा धारण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का यहां पर वर्णन किया गया है, और वहां पर सब देवता लोग आकर के भगवान का स्तुति करने लगे, शंख दुमदुमिया बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, सिद्ध चारण, किम पुरुष, किन्नर, ये सब गीत गाने लगे। उधर से कश्यप मुनि आए, बड़े खुश होकर के कश्यप मुनि आए, और उनके साथ में ऋषि लोग भी आए। जहां पर भगवान वामन देव का आविर्भाव हुआ है, वो भी स्थान बिहार में है, पटना के उस साइड में गंगा किनारे, यह कहलाता है सिद्ध क्षेत्र, गंडकी नदी के किनारे है, जहां पर भगवान कोई जनकपुर जाएगा तो जनकपुर के रास्ते में यह आता है, सिंहपुर कहते हैं, वहां पर बहुत सुंदर मेला लगता है पशुओं का, लेकिन वो सिद्ध स्थल ही है जहां पर ऋषि लोग तपस्या किए थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी वहीं से ये राधा रमण जी को प्राप्त किए थे, राधा रमण देव को वहीं से सिद्ध स्थली से प्राप्त किए थे। तो वहां पर बहुत ऋषि लोग आज भी रहते हैं, तो वे आए और सब लोग भगवान का दर्शन किए, और सब लोगों के सामने, सबके देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप को त्याग करके बभूवते नैव सहवामनो बटु, सबको देखते देखते ठीक नट के समान, जैसे नट अपना पोशाक बदल लेता है, भगवान अपने शरीर को बदल करके और छोटा वामन का रूप धारण कर लिए। वामन भगवान की जय, छल विक्रमणे बलि मद्भुत वामन, पद नख नीरजनित जल पामन, केशवधेता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पामन, केशवधेता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, वामन भगवान की जय। इस प्रकार से वामन देव का अवतार हुआ। अब देखिए, जब कृष्णा अवतार में भगवान अपने भेष को बदले, जब माता देव की प्रार्थना की, चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप धारण किए, या रामावतार में जब माता कौशल्या ने प्रार्थना किया, तजहु तातय रूपा, तो भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। लेकिन यहां पर भगवान छोटे बालक नहीं बने, यहां 7 साल के कुमार अवस्था को प्राप्त किए। तम बटु बामनम दृष्टवा मोदमानम हर्षय, कर्माणि करयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। जितने महर्षि ऋषि लोग थे जो प्रजापति कश्यप के साथ में आए थे, वे लोग भगवान वामन को देख करके, तम बटु वामनम दृष्टवा मोदमाना महर्षय, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न मुद्रा में आकर के, कर्माणु करयामासु पुरस्कृतम प्रजापतिम, प्रजापति कश्यप को आगे किए कि चलिए आप संस्कार कीजिए, शुद्धिकरण संस्कार कीजिए,
अब 7 साल का बालक, तो ऑलरेडी 2-3 संस्कार तो खत्म हो चुका था, है? जन्म संस्कार खत्म हो गया, उसके बाद अन्न प्रसारण संस्कार खत्म हो गया। अब देखिए, जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्मना जायत शूद्र संस्कारोद जो भवेत, संस्कार से कोई द्विज होता है। तो अब संस्कार किया गया, और ब्राह्मण का जो संस्कार है वह है यज्ञोपवीत संस्कार। तो वहां पर वामन देव का संस्कार किया गया। आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए, जिसके पास पेपर पेन है वो लिख लीजिए। वामन देव को गिफ्ट कौन कौन क्या दिया उस संस्कार में? कहते हैं, तस्य उपनियमानस्य सावित्रीम सविता ब्रवेत बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। जब वो संस्कार हो रहा था यज्ञोपवीत संस्कार में, भगवान सूर्यदेव ने स्वयं गायत्री का मंत्र उनके कान में जपा। बृहस्पति जी उनको जनेऊ दिए, उनके पिताजी कश्यप मुनि मुंज की मेखला भेंट किए। मेखला जो करधनी में बांधा जाता है, आजकल हम लोग नहीं, पहले बच्चे लोग करधनी में बांधते थे, काला धागा बांधते थे। आच्छादनम माता छौ छत्रम धौ छत्रम जगतपते। इस प्रकार से मृगचर्म इत्यादि, तो मृगछाला उनको माता पृथ्वी ने प्रदान किया। कृष्णाजिनम भूमि, दंडम सोमो वनस्पति, और वनस्पतियों के राजा सोम यानी चंद्रमा उनको दंडा दिए। कौपिन उनकी माता अदिति ने कौपिन दिया। धौ छत्रम स्वर्गलोक के निवासी लोग उनको यानी इंद्र उनको छाता दिए। कमंडलु वेदगर्भ ब्रह्मा जी स्वयं उन्हें कमंडलु दिए। कुशान सप्तऋषयो ददु, और सप्तऋषियों ने उनको कुश दिया। एक कुश बड़ा काम में आया है बाद में, वो बताऊंगा बाद में, लेकिन एक कुश दिए सप्तऋषि लोग। ये सप्तऋषि लोग प्रत्येक सृष्टि में ये सप्तऋषि होते हैं, मनु हो सप्तऋषि होते हैं, इंद्र होते हैं, तो सप्तऋषि। अक्षमाला महाराज सरस्वती अव्यय आत्मज, हे महाराज परीक्षित, अव्यय आत्म मुंज का रस्सी से बांध लिए, कौपिन धारण कर लिए, दंडा ले लिए, छत्र धारण कर लिए। अब एक हाथ मतलब कि एक हाथ से छत्र दिए थे और डंडा इधर लगा लिए थे, एक हाथ खाली था। तो भीख मांगने के लिए वो भी चाहिए ना, कटोरा चाहिए। तब यक्षराट कुबेरों के कुबेर, यक्षपति कुबेर उनको वह पात्र दिए जिसमें वो भिक्षा मांग सके। भिक्षा भगवती साक्षात उमा अम्ब अंबिका सती। बाप रे, आप ये पार्वती जी का 5-6 नाम यहां पर ले दिया गया है, और उसने भिक्षा कौन दी? भगवती है? भगवती शिव जी के पत्नी का नाम है भगवती, माता भवानी ने। साक्षात उमा, उमा भी उनका ही नाम है। अंबिका ब्रह्मांड की जननी है, उसे अंबिका कहा जाता है। और सती, वो सती साध्वी हैं। तो चार नाम यहाँ पर कहा गया है माता पार्वती का, सती का चार नाम है, भगवती, साक्षात उमा, उमा, अंबिका और सती। इसीलिए इस संसार में लोग शक्ति का पूजा करते हैं, क्योंकि अन्न इत्यादि जो है उस शक्ति प्राप्त होता है सती से, इस सब वस्तुएं। तो उन्होंने प्रथम बार उन्हें भिक्षा दिया। इस प्रकार से सब प्रकार से सुसज्जित होकर के अब भगवान वामन देव अपने मिशन पर चल दिए। उनका मिशन क्या था? हैं? सही मिशन बताओ। हाँ, किसने बताया हाथ उठाओ? हाँ, जो देवता लोग खो चुके थे उसको ला करके वापस देना, और अदिति का इच्छा पूरा करना। क्या इच्छा था उसका, दूसरा प्रश्न होगा। जो असली है वही। तो अब उस काम के लिए अपने भगवान सत्य संकल्प हैं। जो संकल्प भगवान कर लेते हैं वो करते हैं। सत्य संकल्प भगवान अब चल दिए वहां से। अब जब जा रहे थे तो सुन लिए, क्या सुने? एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था गुजरात में, बिहार में जन्मे थे, बिहार से कच्छ तक पहुंच गए पैदल चलकर खड़ाऊ के साथ में। श्रुत्वा अश्वमेध यजमान मूर्तिजम बलि भृगु भृगुणाम उपकल्पित जगाम तत्र अखिल सार संभृतो भारेणगान सनमयम पदे पदे। उन्होंने सुना कि भृगुवंशियों के अध्यक्षता में बलि महाराज एक बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में पधारने के लिए भगवान को निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हम लोगों को निमंत्रण चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यदि विवाह है तो वहां पर निमंत्रण चाहिए, यदि किसी का मृत्यु हो गया तो वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मृत्यु हो गया तो अनजाना व्यक्ति भी जा सकता है, शव के प्रोसेशन में। आजकल तो मृत्यु पर भी निमंत्रण देना पड़ता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है तब लोग जाते हैं। तो विवाह में निमंत्रण की जरूरत पड़ती है लेकिन मृत्यु में नहीं। वैसे ही भगवान की सेवा में निमंत्रण की जरूरत नहीं है, भगवान के मंदिर आने में निमंत्रण की जरूरत नहीं है, यज्ञ कहीं होता है निमंत्रण की जरूरत नहीं है। और भगवान तो कहीं जा सकते हैं, फिर भी यज्ञ हो रहा था तो भगवान वहां के लिए प्रस्थान किए। जब जो भगवान चल रहे थे तो यहां पर कहा गया है, देखने में छोटे थे, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बिल्कुल देखने में छोटे थे। जब चल रहे थे भारीण गाम, जो पृथ्वी थी, सम्मयन, भगवान पृथ्वी को दबाते हुए चल रहे थे और पृथ्वी डगमगा रही थी पदे पदे जब भगवान पैर रखते थे। तो अब भगवान चल दिए बिहार से। तम नर्मदया तट उत्तरे बलि, नर्मदा नदी के किनारे उत्तर में बलि, यम मृत्युजते भृगु कक्ष संज्ञ के, भृगु कक्ष कच्छ है, पाकिस्तान उस साइड में है और इस साइड गुजरात है, कच्छ।
तो कच्छ में वहां पर बलि महाराज वहां के थे, कच्छ गुजरात के थे, बलि महाराज गुजराती थे। कितने गुजराती, सब बहुत गुजराती लोग, बिहारी कोई नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। तो वहां पर एक यज्ञ हो रहा था, तो वहां पर ये पहुंचे और ये यज्ञ के अध्यक्ष थे भृगुवंशी लोग। जब भगवान वामन देव वहां पर आए तो लग रहा था सब लोग एकांतिक भाव से देख रहे थे भगवान को। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हो जग में, जग का दर्शन करने के। तम मृत्यु यजमान सदस्या हतस हत त्विशो वाम तेजसा नृपः। जितने यजमान थे, यजमान बलि महाराज के साथ में ऋतक जो लोग, सब खड़े हो गए और उन सब लोगों का तेज फीका पड़ गया। हत त्विशो वामन तेजसा नृपः। हे महाराज परीक्षित, भगवान वामन देव के तेज के सामने हत त्विशा, भगवान का तेज था वो नष्ट कर दिया उन लोगों के तेज को, वे लोग फीका पड़ गए। तो आपस में लोग बात करने लगे कि कौन आ रहे हैं, साक्षात सूर्य आ रहे हैं, कहीं सनत कुमार लोग तो नहीं आ रहे हैं, चतुष्कुमार लोग, चतुष्कुमार में से एक कुमार कोई नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपस में बात कर रहे थे सब लोग खड़ा होकर के। और तब भगवान वहां पर धीरे धीरे आ गए। पहले तो तेज दिखाई पड़ा और जब खड़ा हुए तो धीरे धीरे भगवान जब आने लगे तो वे लोग देखे। क्या देखे कि कोई छोटा ब्राह्मण बालक है जो छत्र धारण किया है, कमंडलू है और दंड है और देखने में बड़ा सुंदर लगता है। उस बालक को वे देखे, उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है और सब लोग प्रणाम कर रहे थे, हाथ जोड़कर खड़े थे अगवानी करने के लिए भगवान का। यह प्रमाणित करता है कि शुक्राचार्य बलि महाराज को समुचित ज्ञान दिए थे, सही ज्ञान दिए थे। ज्ञान में अनजान में कोई अतिथि आ जाए तो हमें चाहिए कि खड़ा होकर के उसका सत्कार करें। जब कोई व्यक्ति आता है, जान पहचान का हो चाहे, जब हम किसी के पास मिलने जाते हैं, मैं प्रायः फंड रेजिंग में ये पूरा प्रसंग अप डाउन बताता रहता हूं। तो जब भी हमारे यहाँ कोई आए तो पहले तो खड़ा होकर के स्वागत करना चाहिए, बैठे रहना अपमान है, खड़ा हो जाना चाहिए और हाथ जोड़कर स्वागत करें, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो, क्योंकि अतिथि जो होता है भगवान का स्वरूप, अतिथि देवो भव। तो हाथ जोड़ करके उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इसी प्रकार से वे लोग हाथ जोड़ करके सब के सब लोग खड़े छे। यजमानम प्रमुदित हो दर्शनीय मनोरमम रूप अनुरूप वयम तस्मा आसनम आहरत जजमानम प्रमुदितो। जजमानम मतलब बलि महाराज, प्रमुदितो प्रकृष्ट रूपेण मुदितो, अत्यंत प्रसन्न हो गए। यानी बाहर से ही प्रसन्न नहीं, उनका दिल भी बहुत खुश हुआ, मन भी बहुत खुश हुआ, उनका शरीर के अंग प्रत्यंग खुश हो गया, रोंगटे खड़े हो गए भगवान को देख करके। दर्शनीय मनोरम, मनोरम जिसमें मन रम जाए, जिसमें मन लग जाए। तो भगवान का सौंदर्य देख करके बलि महाराज बड़े खुश हुए, उनका मन भगवान में लग गया। क्या देखे हैं कि रूप अनुरूप वयम, जैसा रूप है वो वय के अनुरूप है। वय मतलब उम्र, उम्र के अनुसार ही उनका रूप है। हम लोग देखते हैं मम्मी में, आप लोग भी देखे होंगे, कुछ बामने होते हैं, छोटे मूवी में आते हैं छोटे वाले, हैं वो 40-50 साल का हो गया लेकिन छोटा भी छोटा है। तो वो रूप अनुरूप वयम नहीं होगा, मतलब जितना
उम्र हो वैसा ही रूप हो तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसका वय बड़ा हो और रूप छोटा हो तो भी अच्छा नहीं लगता है, और कभी किसी का वय छोटा हो और रूप घटोत्कच हो गया है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए। तो रूप अनुरूप भयम, उनका जो रूप था वो उनके अवस्था के अनुसार, उनके एज के अनुसार ही उनका रूप था, बड़े सुंदर देखने में लगे थे। तस्मात आसन आहरत, ये सत्कार करने का अति सत्कार के अलग अलग तरीके हैं। प्रथम में बताया कि खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके अतिथि को घर पर बुलाना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं तीन प्रकार से, आसन दे करके और मृदु वचन के द्वारा और जल दे करके अतिथि सत्कार करना चाहिए। ये तीन तो संक्षिप्त में है, कई ये हैं। तो इस सब प्रकार से बलि महाराज सत्कार किए बामन भगवान का। तो पहले खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके, अब आसन दे करके, आसन आहरत आसन दिए। स्वागतेन अभिनंदात पादो भगवतो हो बलि, अब उनको बैठा करके और उनका पैर धोए। कभी अतिथि आए घर पर तो उनका पैर धोना चाहिए, स्पेशली ब्राह्मण गुरु वैष्णव आए तो उनका पैर धोना चाहिए, क्योंकि भक्ति में तीन बल है, भक्त पद धूलि जार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। जिसको भक्ति बढ़ाना है ये तीन महाबल है। भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों का चरण रज, भक्त पद जल और चरण धोया हुआ चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष। भगवान जब खाकर छोड़ते हैं तो प्रसाद कहलाता है, और भक्त लोग खाकर छोड़ते हैं तो महाप्रसाद कहलाता है। तो महा 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 महाप्रसाद, तो अवशेष, तीन महाबल। ये तीन ऐसी वस्तु है जो भक्ति में वर्धक है, भक्ति वर्धक है। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आता है कालादास का, काला कृष्ण दास का। उन्होंने व्रत ले लिया था कि मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। कभी कभी कोई नहीं, सॉरी, महाप्रसाद ही खाऊंगा। कभी कभी नहीं मिलता था तो किसी घर पर जाते थे हैं? और एक बार वे एक व्यक्ति के पास गए, उनका नाम था झाड़ू ठाकुर। तो उनके पास कुछ आम लेकर गए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जब मित्र के पास जाए, संबंधी के पास जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आम लेकर गए। झाड़ू ठाकुर जात के, नीच जात के थे, झाड़ू मारने वाले थे, लेकिन महान वैष्णव थे। भंगी परिवार में जन्म हुआ था लेकिन महान वैष्णव थे। तो जब एक उनको आम दिए और कहे कि आप खा लीजिए खा लीजिए, लेकिन कहा कि नहीं 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 आपका पहले सत्कार किए उसके बाद में। ये चाहते थे कि उच्छिष्ट हम खाऊं, उसका उच्छिष्ट खाऊं। जब ये चले गए तो जाकर कहीं छिप करके छिपे हुए थे, और जब झाड़ू ठाकुर आम खा लिए और खा करके गुठली और छिलका जब बाहर फेंके, तब ये कालादास कृष्णदास आकर के और उसको ग्रहण किए। उन्हें प्रण लिया था कि मैं उच्छिष्ट ही खाऊंगा। तो बहुत बड़ा शक्तिशाली यंत्र है उच्छिष्ट कर खाना। एनीवे, तो इस प्रकार से उनका चरण धोए। तत्पात शौचम जनकल्मषापहम सधर्म विमुद्या दधासु मंगलम या देव देवो गिरिश्चंद्र मौली दधार मूर्ध्या परया च भक्त्या। तदपाद शौचम, भगवान के चरण को ये धोए थे यानी गंगा जी को प्राप्त किए। तदपाद शौचम जनकल्मषापहम,
जो चरणामृत है, जन मतलब हम लोगों का कलमस आप हम, कलमस मतलब पाप और आप हम मतलब नष्ट करने वाला, ये चरणामृत जो है वह समस्त पापों को नष्ट करता है। इसलिए मंदिर में आकर के चरणामृत आप लोग जरूर लेते रहना, गंगा जी का जल चरणामृत है, वैष्णव का धोया हुआ पैर धोया हुआ चरणामृत है। सधर्म, स मतलब बलि महाराज, धर्मवित बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, विरोचन के पुत्र थे, बड़े महान भक्त थे। इसे कहते धर्मवित, धर्म को अच्छी तरह से जानते थे। मूर्धन अदधातः, वे उस चरणामृत को थोड़ा पान किए और अपने सिर पर धारण किए, क्योंकि यह चरणामृत जो है वह सुमंगलम। पहले कहा गया है जन कलमस आप हम, पाप को नष्ट करता है, और दूसरा काम करता है सुमंगलम है, सर्व कल्याणकारी है। जिसको कल्याण चाहिए उसे, चाहे पापी हो चाहे पापी ना हो, कल्याण चाहिए उसे ग्रहण करें। उदाहरण दिया गया है, एक तो है कि चरणामृत पापी के पाप को नष्ट कर देता है। तो कोई कह सकता मैं तो पापी नहीं, मैं पाप नहीं करता हूं, तो मुझे चरणामृत की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं सुमंगलम, एक कल्याणकारी है। इसीलिए यद देव देवो गृश्चंद्र मौली, देवादिदेव भगवान महादेव क्लियर करते हैं, गृश्चंद्र मौली, गिरीश जो पर्वत पर कैलाश पर रहते हैं, चंद्रमौली अपने जटा में यहां पर चंद्रमा को धारण किए हैं, वे भगवान भी जो पाप रहित हैं, वे भगवान भी। दधार मूर्धया परया च भक्त्या, जब गंगा जी आ रही थी तो गंगा जी को अपने चरण अपने सिर पर धारण किए, कैसे, परया च भक्त्या है? उसको परम भक्ति के साथ भक्ति पूर्वक धारण किए। तो चरणामृत को हमें भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अब बलि महाराज यह सब करने के बाद, भगवान शिव का एक नाम गंगाधर भी है, गंगा जी को धारण किए इसलिए गंगाधर कहा जाता है। अब बलि महाराज अब वाणी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं, कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मम किम करवाम मे ते ब्रह्मर्षिणा तपसक्षात मन्ने त्वाद् बपूधरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका यहाँ पर स्वागत है। ब्रह्मम किम करवामते, हे ब्राह्मण देवता आदेश करें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ब्रह्मर्षिणाम तपसक्षात, आप दिखाई पड़ रहे हैं कि साक्षात ब्रह्मर्षियों के तपस्या के साकार स्वरूप हैं, तप का फल आप हैं, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बलि महाराज गदगद हो गए थे और कह रहे हैं अधम नह पितरम तृप्त, आज मैं खुश हूं कि हमारे पितर लोग आपके आगमन से अवश्य ही तृप्त हुए हैं, ये तृप्त हो गए। अधम न पावितम कुलम, आपका चरणामृत पान किया, पूरे घर में छिड़काव किया, मेरा पूरा घर पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्ध शिष्ट कर्तु यम, जो मैं ये यज्ञ कर रहा हूं उस यज्ञ का फल आज मुझे मिल गया। यद भवान आगतो गृहान, आप जैसे महान व्यक्ति हमारे घर पर आ गए, आपके घर पर आने से ही हमारे पितर लोग संतुष्ट हो गए, हमारा पवित्र पवित्र हो गया, जो यज्ञ कर रहा हूं वो यज्ञ हमारा सफल हो गया। अब अंत में कहते हैं, खुश होकर कहते हैं, वाणी से सेवा कर रहे हैं, कहते हैं हे बटु बालक, मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में कुछ है। देखिए अब चरणामृत बलि महाराज पान कर लिए हैं, चरणामृत पाप पान करने से दो फायदा होता है,
मैं बताया क्या क्या। हाँ हाँ पाप से मुक्ति मिलती है, और जब पाप नहीं रहता है तो मन बिल्कुल शुद्ध रहता है, और शुद्ध मन से हम दूसरे के मन को जान सकते हैं। शुद्ध मन ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो शुद्ध मन से भगवान के मन में क्या बात है वो भी जान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के मन में क्या बात है वो भी जान सकते हैं। जो साधु महात्मा होते हैं उनका मन शुद्ध होता है, इसीलिए तो दूसरे के दिल के बात को जान जाते हैं। तो शुद्ध मन से कह रहे हैं, यदि यदवटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में त्वाम अर्थिना विप्रसुतानन अर्थये। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं कि आपके मन में कुछ है, आप कुछ चाहते हैं, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आप जो भी चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं, आप कुछ मांगने के लिए हमारे यहां पर, त्वाम अर्थिना है, आप हमारे पास आए हैं अर्थिना बन करके, कुछ इच्छा लेकर के। अर्थिना मतलब इच्छा से, आपके मन में कुछ इच्छा है जो मैं जानता हूं कि इच्छा से आए हैं, बताइए मैं क्या दे सकता हूं। अपने मुंह से बोलने लगे कि आप यद यद अटो वांछसी, हे ब्राह्मण, हे बटु ब्राह्मण, हे बामन, जो जो वस्तु तुम मांगोगे, वांछसी इच्छा करोगे, तत् प्रतीक्ष में, एज इट इज मैं दूंगा। ये नहीं कहूंगा कम है ज्यादा है, इतना आप के मांग रहे हैं थोड़ा कम ही मांग लीजिए, इतना हमारे पास नहीं है, इत्यादि इत्यादि नहीं, मैं सब दूंगा जो जो तुम चाहोगे। गाम यदि सोचे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को गाय प्रिय होती है, गाम यदि आप गाय चाहिए तो मैं गाय दूंगा। कांचनम सोना, ब्राह्मण सोना से भगवान का, आजकल तो प्लास्टिक से भी पूजा करके धो लेते हैं, भगवान की पूजा के लिए सोना के बर्तन होते चाहिए, तो कांचनम गुणवत धाम मिष्टम तथा अन्न पेय अमृतम। गुणवत धाम सब कुछ से सजा धजा सज्जित घर चाहिए तो मैं घर दे दूंगा, खाने पीने का सब व्यवस्था कर दूंगा। या आप ब्राह्मण हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं, पहले बचपन में विवाह होता था, तो यदि विवाह करना चाहते हैं तो वा विप्र कन्या, मैं विप्र कन्या भी आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। और जब विवाह हो जाता है तो घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, घर चाहिए, थोड़ा खेत चाहिए इत्यादि, तो कहते हैं तुम्हारे लिए ग्रामन, मैं गांव का गांव तुम्हें दे दूंगा, वो भी वैसा गांव जहां पर सब प्रकार से समृद्धि हो, जहां घोड़े हो, हाथी हो, रथ हो, रथान तथा अथम संप्रतीक्ष। पहले कहते तत्प्रतीक्ष, जैसी तुम्हारी कामना होगी वह दूंगा। अब कहते हैं संप्रतीक्ष, सम्यक रूप से दूंगा, यानी बिना दुख का दूंगा, दुख नहीं होगा। आजकल हम कहते हैं वचन दे दिए तो पालन करना पड़ता है, दुख होता है, लेकिन दुख के साथ में दिया गया दान दान नहीं होता है। वह बात हम दान का महिमा हम काल कल बताएंगे। तो आज बलि महाराज ब्लैंक चेक दे रहे हैं बामन देव को। अब बामन देव इस पर क्या लिखने वाला है, कितना रुपया लिखने वाले हैं, तो बाद में देखा जाएगा, उसको देखेंगे। ब्लैंक चेक देने के लिए कहते हैं संप्रतीक्ष, बिना दुख के मैं वह दूंगा। तो इस प्रकार से बामन भगवान बलि महाराज की यज्ञशाला में पधार गए हैं, और बलि महाराज यज्ञ छोड़ करके भगवान बामन देव का अगवानी किए, और भगवान का दर्शन हो कर करके प्रसन्न चित्त हो करके, और मन अपने मन उद्गार को भगवान के सामने प्रकट किए, और भगवान को जो भी चाहिए वह देने के लिए आज उन्होंने वचन ले लिया, वचनबद्ध हो गए। अब आगे क्या होगा, बलि महाराज से बामन देव द्वारा दान की याचना जो है वो आगे कथा की जाएगी। हरे कृष्ण। एक कथा
कथा 6 दिन है 7 दिन है? 7 दिन होना चाहिए ना, संडे।